जियानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए थे, क्यों लेके आए थे? प्रचुर करुणा के कारण। हेना प्रभु को था गेला जियानंद ठाकुर। जैसे जियानंद ठाकुर कहाँ चले गए, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं, कहाँ मोरा भट्ट जोग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं, कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं, एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, और अनायासी कहाँ चले गए, गोरे नर्तकों के राजा, नर्तकों के गोरे राजा है ना श्री चैतन्य। पाषाणे को टीबो माथा अनाले पसीबो, तो मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं अथवा अग्नि में प्रवेश करूं, गौरांगा गुणे रणधि कोथा गेले पाबो, तो किस प्रकार से मैं गौरांग जो गुणों के भंडार उनको प्राप्त करूं, से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, तो जितने संगीत है भगवान के, उन्होंने भगवान के संग विलास किया, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रोते हैं। तो आज बहुत पवित्र दिन है जियानंद प्रभु के तिरुभाव का, चूँकि हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता है, तो केवल साल में एक ही दिन होता है कि हम उनको याद करें, और ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है कि हम उनसे प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके विषय में तो काफ़ी बातें हैं, इतना समय नहीं है कि हम सब बातें उनके बारे में सुन पाएँ, लेकिन जितना समय है उसके अनुसार हम उनके बारे में सुनेंगे। तो प्रभुपाद के जीवन में ये किस समय आए और किस स्थान पर प्रभुपाद से मिले, तो सबसे पहले ये घटना है कि सैन फ्रांसिस्को में जब मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रभुपाद को वहाँ पहुँचना था, तो 16 जनवरी 1967 की तारीख है निश्चित हुई पहले से ही, कई दिन पहले से है? अगर प्रभुपाद का आगमन होना है सैन फ्रांसिस्को में और वहाँ मंदिर में उद्घाटन होना है ना, तो बहुत बड़ी ये घटना है, तो इसका जो है विज्ञापन करने के लिए कुछ दिन चाहिए, तो कई दिन पहले से ही ये विज्ञापन जो है मतलब आ रहा था, समाचार पत्रों में छप रहा था और मीडिया में दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था, तो दैनिक समाचार पत्रों में छप रहा था, दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा सैन फ्रांसिस्को के जो निवासी हैं वो तो अपेक्षा करते हैं, उनकी जो है कोई 1% भी रुचि नहीं होती कि कोई भारतीय स्वामी आ रहे हैं तो उनके दर्शन करें या उनका प्रवचन सुने, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तो रुचि है नहीं, लेकिन एक व्यक्ति था, इसका नाम था जिम कोहेर। क्या नाम था? जिम कोहेर। ये व्यक्ति जो था इसने ध्यान दिया क्योंकि बचपन से ही इस बालक को जिज्ञासा थी कि भगवान कहाँ है, तो ये बात आती है कि 4 साल का जब ये बालक था तो ईसाइयों के जो है परिवार में पैदा हुआ था, तो गिरजाघर में जैसे जाते हैं तो अपनी दादी के साथ गिरजाघर में आया था, तो वहाँ गिरजाघर में खड़ा हुआ ये बालक 4 साल का था और चारों तरफ उत्सुकतापूर्वक देख रहा है, चारों तरफ देख रहा उत्सुकतापूर्वक, तो दादी ने पूछा कि क्या देख रहे हो, तो बालक क्या पूछता है कि भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है ना, तो दादी ने कुछ उत्तर दिया जो कि संतोषजनक नहीं था, और ये प्रश्न इसके दिमाग में बना ही रहा कि ईश्वर कहाँ है। तो चार साल की अवस्था से ये जो प्रश्न है इस बच्चे के मन में बना रहा। फिर आगे चल करके इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की इन्होंने। और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को के सड़कों पर टैक्सी चलाते थे, इंजीनियरिंग की डिग्री पा करके टैक्सी चलाएं, है ना, ये भी कोई मतलब क्या कहेंगे उसको, सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्या कहेंगे है कि बड़ा बेकार आदमी है, क्या कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे कि भाई इंजीनियरिंग की डिग्री पा ली और टैक्सी चला रहे हैं, है ना। लेकिन टैक्सी क्यों चलाते थे, क्यों, क्योंकि उच्च वर्ग और व्यवसाय की चूहा दौड़ में स्वयं को जो है इनका जो है चलता नहीं, इनका जमता नहीं, कि चूहा दौड़ ही तो है, चूहे की दौड़ है, ऊंचे और ऊंची नौकरी मिले और बड़ी नौकरी मिले, बढ़िया नौकरी मिले, बढ़िया बंगला मिले, बढ़िया कार मिले, है ना। तो ये सब जो है इनका जो हृदय है वो बिल्कुल सरल था, अपना सरल जीवन जीना। तो इतनी बड़ी डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री पा ली, लेकिन तो अभी इनकी रुचि नहीं थी कि बहुत ज़्यादा दिखावा करें, क्योंकि वो होता ही है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होती फिर ज़्यादा बड़ी नौकरी, अपना रहन सहन बड़ा अच्छा बनाना है और अपना टिप टॉप है, तो सामने वाले व्यक्ति को जो है दिखाना कि मैं कितना ऊँचा हूँ, है ना। तो ये सब जो है फिर वो दिखावटीपना बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपनी सरलता जो है समाप्त हो जाती है। आज की जो शिक्षा है वो यही है, जितनी ऊंची शिक्षा आप प्राप्त करते हैं, बड़ी नौकरी, तो फिर जो है आप सामान्य व्यक्ति से आप बात नहीं करेंगे, फिर ऐसे रहेंगे, किसी सामान्य व्यक्ति से वो बात नहीं कर सकता है। वो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, आप बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े बड़े ऑफिसरों से मिलना है और हाउ आर यू सर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, केवल दिखावा, अंदर तो दुखी दुख भरा है लेकिन हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम वेल, आई एम वेल, ऊपर से दिखाना बड़ा मैं जो है खुश हूँ, अंदर अंदर क्या है, अशांति भरी। तो जियानंद जो है, जो जिम को है, रवीन का जिम को है, इनको जो है ये जीवन पसंद नहीं आया कि पढ़ाई लिखाई कर ली और ना। वैसे इनका जीवन मेरे जीवन से भी बहुत मिलता जुलता है, मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी और मैंने भी नौकरी नहीं की, इसी कारण से नौकरी नहीं की, है ना। लेकिन कारण मैं भी नहीं बता पाता था कि क्या कारण है, और सब लोग जो है यही बोलते थे, टोकते थे कि इतनी बड़ी जो है पढ़ाई करके और तुम जो है क्या करते, कुछ नहीं करते। तो बड़ी लज्जा की स्थिति में मैं भी रहा। तो ये भी टैक्सी चलाते, टैक्सी चलाने के लिए तो कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता ही नहीं है, इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई करके टैक्सी चलाते हैं, सड़कों में टैक्सी चलाते हैं, है ना। लेकिन टैक्सी चलाने में क्या है, अपने हृदय को जो है कुछ संतुष्टि होती है कि दिखावापन नहीं है, अपना सरलता है अपना, तो वो जो है इनको अच्छा लगा कि भाई सरल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, वो ज़्यादा अच्छा है कि टैक्सी चलाओ। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहा करते थे कि ये लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं और फिर जो है नाक ऊपर करके चलते हैं, सामान्य व्यक्ति से बात नहीं करते, उनसे अच्छा है सड़क में झाड़ू लगाने वाला जो झाड़ू लगाता है और किसी साधु को देख करके हरे कृष्णा बोलता है, सिर झुकाता है, प्रणाम करता है, तो ज़्यादा अच्छा है कि जो सरल हो, विनम्र हो। पढ़ाई लिखाई करके आप जो है बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, अब आप किसी को जो है सम्मान नहीं दे सकते हैं, और अपने हृदय की जो कमजोरियां हैं फिर आप बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़े हो गए, अपने अपने दिल की कमजोरियां, अपनी कमियां फिर कैसे बताएं। तो वो चीज़ जो है जो सरल स्वभाव के लोग होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता बहुत बड़ा ऑफिसर बनना, ये बड़ा अंदर और ज़्यादा अशांति होती है, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, और आप जो है भगवान को ना देख करके बाहर की दुनिया में अपने को सुखी दिखाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं अंदर से और अशांति पैदा करते हैं। तो अच्छा ये है कि बाहर से अशांत रहें अंदर से शांत रहें, वो ज्यादा अच्छा है। अंदर से शांति का अनुभव करें, बाहर से अशांति। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध करने में बाहर से तो अशांति गुस्सा सब कुछ है, और अंदर से शांति, तो भगवान प्रसन्न है। तो भगवान को प्रसन्न करते हो अंदर से शांति मिलेगी, बाहर हो सकता है गुस्सा कर रहे हैं अशांत रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है। या बाहर से बड़े शांत दिखाई दे रहे हैं और अंदर अशांति, जो भगवान प्रसन्न नहीं अंदर अशांति है ना। तो ये जिम कुहेर एक ऐसा व्यक्ति था है ना, जो कि अगर अंदर अशांति है तो ऊपर से वो नहीं दिखाना चाहता कि मैं बहुत सुखी हूँ और बड़ा सुखी जीवन दिखावा करना है, हैं मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मुझे इतनी नौकरी मिलती, इतना बड़ा घर मैंने बनाया है, मैं कितना सुखी हूँ। यही तो है आजकल की पढ़ाई लिखाई का मतलब, यही है कि आप दिखाएं कि मैं कितना सुखी हूँ, और अंदर से क्या मिले, अंदर से क्या मिले, अशांति। आज की पढ़ाई का मतलब यही है, अंदर अशांति और ऊपर से शांति। उससे अच्छा अशिक्षित बने रहो है कि मैं मूर्ख हूँ, तो भगवान इससे जो है संतुष्ट होते हैं कि आपने को सुखी नहीं समझते, अपने को बुद्धिमान नहीं समझते, अपने को योग्य नहीं समझते, तो भगवान जो है संतुष्ट होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है दिखावा करना। तो ऐसा बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई करके वो जो है नौकरी मिले तो भी नौकरी ना करें, बहुत कम लोग। अब किसी को मजबूरी में टैक्सी चलाने पड़े तो अलग बात है कि नौकरी नहीं मिली है, लेकिन किसी को अच्छी नौकरी भी मिले लेकिन नौकरी ना करे और टैक्सी चलाए है ना, तो वो जो है फिर बहुत विरले। और वो कोई व्यक्ति जो है मतलब होगा ऐसा जिसके अंदर सरलता है, जिसके अंदर कुछ दिव्य गुण है ना। तो ये जो है चूहा दौड़ में इनको रुचि नहीं थी, वही चूहा दौड़ है, इसको चूहा दौड़ बोलते हैं। बहुत बड़ी जो है आपने डिग्री प्राप्त कर ली है और उसमें जो है आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं और आगे बढ़ूँ है ना, तो चूहा दौड़ ही है एक प्रकार से। तो चूहा दौड़ में इनको पसंद नहीं था, सामान्य जीवन बिताना, इसको कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। और जो पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है तो वो क्या होता है उसको क्या कहेंगे कि ऊंचा जीवन और सादे विचार। जीवन बहुत ऊंचा है और विचार सादे। विचार सादे का मतलब क्या है, खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना, बस जीवन का अर्थ यही। ये क्या हुआ, सादे विचार। और ऊंचा जीवन है और सादे विचार, तो पशु हैं, पशु की तरह विचार हैं आपके कि जीवन का लक्ष्य क्या है, खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना बस, और बाद में मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, सब समाप्त, ये पशु। लेकिन सादा जीवन उच्च विचार का मतलब क्या है कि जीवन आपका साधारण है, ज़्यादा दिखावा नहीं करते कि आप बहुत ऊंचे हैं, बड़े ऊंचे धरातल के हैं, लेकिन विचार ऊंचे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, शरीर छूटने के बाद अगला जीवन मिलेगा, मुझे कैसा जीवन चाहिए, सबसे अच्छा जीवन क्या हो सकता है, सबसे बढ़िया गति क्या हो सकती है, और मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर भगवान के धाम में जाना तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो ऊंचे विचार, सादा जीवन ऊंचे विचार, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो जिम कुहेर को जो है एक वो दिशा चाहिए थी कि जिसमें मनुष्य के जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है वो प्राप्त हो। अक्सर अप्रसन्न रहते किंतु इसका कारण नहीं जानते थे कि अंदर से उनको शांति नहीं मिल रही है, तो कारण नहीं जानते क्यों शांति नहीं मिल रही है। यद्यपि जिन धार्मिक व्यक्ति नहीं थे लेकिन लेख ने उनमें आसक्ति किरण प्रज्वलित की। तो पढ़ाई लिखाई में फिर क्या होता है, जो भी घर में धार्मिकता होती है वो भी समाप्त हो जाती है पढ़ाई लिखाई में, कि पढ़ाई लिखाई में जो है फिर यही माना जाता है कि आगे जीवन है ही नहीं, बस इस जीवन के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जो थोड़ा बहुत प्रत्येक धर्म में ये बात बताई जाती है कि अगला जीवन है, तो पढ़ाई लिखाई में वो सब जो धार्मिकता है वो सब खत्म हो जाती है ना। तो इनके अंदर भी धार्मिकता नहीं थी, लेकिन इनको आस्था मिली कि 16 जनवरी 1967 को कोई भारतीय स्वामी आ रहे हैं और वो शायद मुझे कुछ दृष्टि प्रदान करेंगे। तो इन्होंने निश्चय किया कि भारतीय स्वामी से मिलना है, निश्चय किया भारतीय स्वामी से मिलना है। अनजाने में अपने भाग्य की पूर्णता की ओर पहला कदम उठाया इन्होंने। इनको पता नहीं था, देखते हैं क्या है, इनको पता नहीं था कि बहुत बड़ी दिशा मिलने वाली। इन्होंने क्या सोचा, ठीक है प्रयास कर लेते हैं, ट्राई परीक्षा कर लेते हैं, भारतीय स्वामी कोई भारतीय स्वामी है, देखते हैं क्या होता है। इनको पता नहीं था कि कितनी बड़ी इनको उपलब्धि प्राप्त होने वाली है और संपूर्ण जो जीवन की जो पूर्णता है, सबसे बड़ी पूर्णता इनको मिलने वाली, इनको पता नहीं था। सोच रहे हैं कि ठीक है ऐसा, जैसे प्रभुपाद को भी जो है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलना था तो उनकी रुचि साधुओं में थी नहीं, जैसे साधु देखे थे अपने खाने सोने वाले थे तो किसी साधु से मिलने की इच्छा नहीं थी। इनके नरेंद्र नाम का जो मित्र था उसने कहा कि चलो देखो एक साधु आए हैं उल्टा डांगा में कलकत्ता में, है ना, नहीं 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 मुझे साधुओं से नहीं मिलना। अरे चल यार, तो मित्र जो है गले में हाथ डाल करके खींच ही ले गए, चल चल चलो। तो ऐसी सोच के बिना इच्छा के गए थे प्रभुपाद भी, और जब भक्ति सिद्धांत से मिले तो पता चला कि ये कैसे साधु हैं, है ना। तो जीवन की दिशा ही मतलब पूरी बदल गई प्रभुपाद की। उसी प्रकार से जिम कुहेर को भी कुछ आशा की किरण मिली थी, जिन्होंने सोचा था 1% आशा, ये भारतीय स्वामी है शायद कुछ दिशा मिल जाए 1%, तो सोचा कि मिल लूं। इन्हें केवल 10 वर्ष और जीना था, केवल 10 साल का जीवन। वो जीवन 10 साल का जो है इनका कितना दिव्य हुआ ये समझना है। कि जब से इन्होंने प्रभुपाद का जो है विज्ञापन देखा कि कोई भारतीय स्वामी आ रहे हैं, है ना, तब से जो है 10 साल का जो इनका जीवन है कितना दिव्य था। इतनी थोड़ी अवधि में जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल इनको मिलना था, कई जन्मों की तपस्या का फल इस मिलना था। इन्हें संसार से प्रस्थान करना था और वैष्णवों की वर्तमान पीढ़ी और आगामी पीढ़ियों के लिए अनेक मूल्यवान शिक्षाएं और प्रेरणा देनी थी। इनका जीवन जो 10 साल का जीवन रहा प्रभुपाद के संपर्क में, वो जो है बहुत बड़ा आदर्श कि कैसे जीना और कैसे मरना, जीने का भी तरीका कैसा होना चाहिए और मरने का भी तरीका कैसा होना चाहिए, वो दोनों शिक्षाएं जो है इन्होंने आदर्श के रूप में प्रदान की हैं। तो अगली संध्या मंदिर पहुंचे तो जिम ने देखा कि मंदिर अधिकतर हिप्पियों से घिरा है, भरा है, हिप्पी हिप्पी हैं सब। हिप्पी जानते कैसे होते हैं, है ना, फटे कपड़े, नए कपड़े भी फाड़ करके पहनते हैं, फटे कपड़े पहनेंगे, बाल जो है खूब बड़े बड़े बिखरे बाल हैं, गंदा शरीर सब कुछ, ऐसे जो है हिप्पी। तो प्रभुपाद के संपर्क में क्या थे, ऐसे हिप्पी थे। 1967 की बात है ना, 16 जनवरी 1967, तो 1966 में तो प्रभुपाद गए थे, 1965 में गए थे, 1965 में गए थे, तो 1966 में इस्कॉन की स्थापना की थी। तो मंदिर अधिकतर हिप्पियों से भरा था और इनके बाल छोटे कटे थे और सभ्य वेशभूषा पहने थे, इनकी वेशभूषा सभ्य थी, यानी साफ कपड़े और बाल भी छोटे छोटे, जिम कोहेर का जो है था ऐसा वेशभूषा कि दिखाई देता भी कुछ ठीक लड़का है, अच्छा व्यक्ति, और बाकी सब जो है कैसे फटे पुराने गंदे कपड़े पहने और बाल बड़े बड़े सब जो है थी ना, ये बड़ी जैसे दुर्गति होती ना ऐसी हालत, वो हिप्पी लोग जो है वहाँ भरे थे। और ये 28 साल के थे और समय ये 28 साल के थे और जितने थे वहाँ के प्रभुपाद से जुड़े हुए उनसे बड़े थे, 28 साल बहुत है, है ना। तो प्रभुपाद के कमरे में जैसे प्रवेश किया तो सब संशय दूर हो गए, कमरे में प्रवेश करते ही संशय दूर हो गए, है ना। पूरे प्रवचन में बैठे रहे और भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 खंड खरीदे, प्रभुपाद से खरीदे, भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंड खरीदे जो प्रभुपाद लेके गए थे भारत से। इन 3 खंडों में इस्कॉन का नाम नहीं था, प्रभुपाद का नाम नहीं था, भक्ति विदान बुक ट्रस्ट का नाम नहीं था, इस्कॉन कुछ नहीं था, है ना। ये प्रभुपाद ने जब छपवाए थे 1965 में, तो ये 3 खंड, अभी तो पहला स्कंद श्रीमद् भागवत का 1 खंड में आता है, तो 3 खंडों में प्रभुपाद ने छपवाए थे। और इन्हीं के जो है 200 सेट लेकर के गए थे प्रभुपाद, और यही उनका जो है हथियार था, प्रचार का आधार था पुस्तकें। तो ये पुस्तकें प्रभुपाद से उन्होंने खरीदी। 1978 में मैंने भी IIT कानपुर में प्रभुपाद की 3 किताबें पढ़ी थी, मैंने भी 3 किताबें ही पढ़ी, यही वाली है। और मुझे भी प्रभुपाद के बारे में कुछ पता नहीं चला 78 में, प्रभुपाद तो 77 में छोड़ गए, और 78 में जब मैंने 3 किताबें पढ़ी प्रभुपाद की, तो उनमें ना तो इस्कॉन की बात थी, ना भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की बात थी, ना प्रभुपाद नाम था। AC भक्ति वेदांत स्वामी केवल लिखा था हिज डिवाइन ग्रेस, यानी कृष्ण कृपा त्रिमूर्ति नहीं था, प्रभुपाद भी नहीं था, AC भक्ति वेदांत स्वामी और वृंदावन बस। तो मैं समझा कि ये व्यक्ति जो है जवान लड़का है और इसको कोई जानता नहीं, जबकि मैं नहीं जानता था, प्रभुपाद को तो पूरी दुनिया जानती। 78 में जब मैंने 3 किताबें पढ़ी तो मैं समझा कि ये इतना मतलब शक्तिशाली तात्पर्य दिए हैं भागवतम के श्लोकों के, और इसको कोई जानता नहीं, ये लड़का है, मैं समझ रहा हूँ। जबकि प्रभुपाद कितनी वृद्धावस्था में उन्होंने लिखे थे भागवतम के तात्पर्य, और जो है संसार से जा चुके, है ना। तो उन्होंने प्रभुपाद से 3 स्कंद, प्रथम स्कंद के 3 खंड खरीदे, और प्रभुपाद ने हस्ताक्षर किए इन 3 पुस्तकों में, हस्ताक्षर किए क्या लेकर के, टू मिस्टर जिम, श्रीमान जिम को। हरिबोल, अभी ठीक है आवाज? तो श्रीमान जिम को इस तरह से लिख करके फिर प्रभुपाद ने हस्ताक्षर किए 3 किताबों में। और पहली बार जिम को अपने जीवन में आनंद का अनुभव हुआ प्रभुपाद के हाथ से किताब लेने। ये जो 3 पुस्तकें प्रभुपाद के हाथ से उन्होंने ली, तो पहली बार जीवन में आनंद का अनुभव हुआ, आनंद जो अंदर से आता है। एक तो बाहर से आनंद आता है, बाहर से दिखाते हैं खुशी, अंदर से खुशी नहीं होती, दिखाते हैं खुशी, है ना। अंदर से आनंद का अनुभव हुआ, और इन्होंने नियमित रूप से मंदिर आना आरंभ कर दिया, रोज आने लगे। अपनी टैक्सी थी तो जहाँ चाहें वहाँ ले जाएं, कोई रोक टोक तो है नहीं। तो उनका जीवन इसलिए बड़ा मतलब स्वच्छंद था इस मामले में, कोई बंधन नहीं था, जिस समय जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, अगर सवारी लेना चाहें तो सवारी लें, नहीं लेना तो नहीं लें, अपने खाली टैक्सी चला करके जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो सवेरे सवेरे ये सवेरे के कार्यक्रम में आने लगे, अपनी टैक्सी चला करके आ जाते थे, टैक्सी वहाँ मंदिर के सामने खड़ी कर दी, अंदर आ जाते थे। विशेष रूप से उन्हें प्रातःकालीन कार्यक्रम अच्छा लगता था, उस समय अधिकतर हिप्पी सो रहे होते थे, वहाँ रहने वाले जो हिप्पी थे वो सोते रहते थे, और ये जो है आते थे, और कई बार तो प्रवचन में एकमात्र सोता होते थे, प्रभुपाद के प्रवचन में अकेले यही सुनने वाले थे और बाकी सब सो रहे हैं। अब सवेरे 8 से 9 जैसे प्रवचन होता है तो वही टाइम होगा प्रभुपाद का 8 से 9, लेकिन वो हिप्पी लोग जो है उस समय भी सोते हैं, क्योंकि वहां का जीवन इसी प्रकार का है, निशाचर, निशाचरों का जीवन है। निशा का मतलब है 10:34 से 3:22 तक निशा काल होता है, तो वो उसमें वो चर निशाचर मतलब व्यस्त रहते हैं अपने काम में, खाना सोना मौज मस्ती करना, निशाचर। और जब रात्रि समाप्त होती, निशा समाप्त होती है, उठने का समय होता है उनका, सोने का समय होता है, तो वो सोते हैं। और फिर कब तक सोते हैं? 10 बजे 12 बजे तक सोते हैं। रात में सोएंगे, 3:30 बजे सोएंगे, तो फिर कब उठेंगे? 10 बजे 12 बजे तब उठते हैं। तो जो हिप्पी लोग थे प्रभुपाद से जुड़े थे, लेकिन प्रभुपाद के प्रवचन में वहाँ रहते हुए भी नहीं उठते थे, और ये अकेले होते थे, कई बार अकेले श्रोता थे। सोचिए, प्रभुपाद ऐसे भी जो है समय, ऐसा भी समय प्रभुपाद ने देखा है कि प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं और एक ही व्यक्ति बैठा। अगर यहाँ एक व्यक्ति बैठा हो तो मुझे कैसा लगेगा? प्रभुपाद में कितना धैर्य था, उन्हें पता था आगे चल करके क्या होगा, उनको उनकी दृष्टि थी, उनकी दूर दृष्टि थी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद निराश नहीं हुए कि एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है मेरे प्रवचन में। एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो इससे भी बड़ी प्रभुपाद को आशा थी कि ये बहुत बड़ा काम करेगा। वर्षों पश्चात इन्होंने बताया कि इन्हें स्वामी जी पर विश्वास था कि ये उन्हें धोखा नहीं देंगे। इस संसार में बस पूरा संसार यही है, धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले, सब एक दूसरे को धोखा देते हैं और एक दूसरे से धोखा खाते हैं। ये संसार इसी प्रकार का है। और जिम कोहेर को जो है ये अनुभव हुआ कि संसार में सब धोखा देने वाले, धोखा खाते हैं और धोखा देते हैं। लेकिन प्रभुपाद के बारे में इनके जीवन में एक ऐसा अनुभव हुआ कि एक व्यक्ति ऐसा है जो धोखा नहीं देता, और वो कौन है? प्रभुपाद। इनको लगा। और जो 4 वर्ष की अवस्था में जो इनके मन में प्रश्न उठा था कि भगवान कहाँ है, दादी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था, लेकिन प्रभुपाद के प्रवचन से इनको समझ में आया कि भगवान कहाँ है। प्रभुपाद के प्रवचन से इनकी चेतना में जो गहरा दबा प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया। और फरवरी 1967 में प्रभुपाद ने जिम को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और जियानंदास नाम दिया। अब सोचिए, 16 जनवरी को मिले थे और फरवरी के महीने में दीक्षा हो गई। हरि बोल। 16 जनवरी तो एक महीना तो निकल गया, नहीं आधा महीना तो ऐसे ही निकल गया, 16 जनवरी को मिले और फरवरी के महीने में दीक्षा हो गई। एक महीने में दीक्षा हो गई, प्रभुपाद ने इनको दीक्षा देने। इसका मतलब है कि इनका जो है जन्म दिव्य था, कि प्रभुपाद से एक बार मिले और एकदम जुड़ गए, बिल्कुल जुड़ गए। माला जप करना तुरंत सब सीख लिया, है ना। सैन फ्रांसिस्को मंदिर के नए भक्त अक्सर अपनी भौतिक इच्छाओं और दैनिक साधना से संघर्ष करते हुए कृष्ण भावना के अंदर बाहर आते जाते रहते थे। बाकी जो हिप्पी लोग थे तो उनको जो है बड़ा कठिनाई हो रही थी, बहुत कठिनाई हो रही थी कि मंगल आरती में उठें कैसे, उठेंगे मंगल आरती में उठेंगे, और फिर मंदिर छोड़ के चले जाते थे, बाहर की दुनिया में रहते, कुछ दिनों के बाद फिर आ जाते मंदिर में, और मंदिर में आए तो भी मंगल आरती में उठना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इनका ऐसा हो गया कि एक बार प्रभुपाद से मिले तो बिल्कुल गाड़ी जो है सीधे रास्ते में आ गई, एक बार में ही मिलने से। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद कहते थे ना कि मेरे गुरु ने तुम लोगों को भेजा है, तो ऐसे लोग है जो प्रभुपाद से एक बार में मिलते ही सब कुछ जो है सीख गए, तो वो कुछ विशेष व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है, है ना। आश्चर्यजनक रूप से किसी ने भी जियानंद को नए भक्त के रूप में नहीं लिया। अभी बिल्कुल नए भक्त हैं, और वो हिप्पी लोग कितने समय से जुड़े हैं, कम से कम 1 साल से जुड़े हुए हैं। लेकिन जियानंद पहली बार मिले प्रभुपाद से और ऐसे मतलब हो गए कि जो हिप्पी लोग सोचते हैं कि ये नया भक्त नहीं, ये बहुत पुराना भक्त है, सब लोग सोचते हैं ये बहुत पुराना भक्त है ना। इन्होंने कृष्ण भावना का स्वाभाविक और बिना किसी कठिनाई के पालन किया। इनको ये सब जो है चीज़ें बिल्कुल स्वाभाविक लगी, जैसे मंगल आरती, है ना, कीर्तन, प्रचार, पुस्तक वितरण, ये सब कार्यक्रम जो है इनको ऐसा लगा कि इनको जैसे यही काम करने के लिए इनका जन्म हुआ है, और तुरंत जो है उसी चीज को पकड़ा जो प्रभुपाद बताते, उसी चीज को पकड़ा पकड़ते थे। माला पर जप करना, कीर्तन में गाना, गाना सीख लिया जैसे प्रभुपाद गाते थे, गाना सीख लिया। प्रसाद खाना, अर्चा विग्रहों की पूजा करना, वो भी सीख लिया, तुरंत सीख लिया। और कहते थे कृष्ण भावनामृत बहुत मधुर है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा बोलते थे, है ना। मतलब इनको जो है उस दुनिया के जैसे क्लबों में जाते हैं और मांस है, शराब है, इसका जो है इन्होंने कभी भी वो चीज़ नहीं माना कि सुख नहीं इनको मिला, और इसमें उनको सुख तुरंत ही सुख मिलने लगा। जयानंद को कृष्ण भावना इतनी मधुर लगी कि शीघ्र अन्य सभी कार्यों के प्रति इनकी रुचि समाप्त हो गई, सब कामों में रुचि समाप्त हो गई कि कहीं जाना है, इधर घूमना, इधर जाना, है ना, सब रुचि समाप्त हो गई। इन्होंने अपनी समस्त जमा पूंजी प्रभुपाद को दे दी और भक्ति रसामृत सिंधु के आमुख में सार्वजनिक रूप से उनको धन्यवाद देते हुए शिला प्रभुपाद ने लिखा, जो ग्रंथ छपा इन्होंने $5,000 इनका जो जीवन की जो है पूंजी थी वो सब प्रभुपाद को दे दी। ये भी नहीं सोचा कि आगे अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कहां से पैसे आएंगे। $5,000 उस समय जो है $5,000 बहुत बड़ी चीज है, वो प्रभुपाद को दे दिया। प्रभुपाद को आवश्यकता थी भगवद गीता छापने की आवश्यकता थी, क्योंकि तो प्रभुपाद की जो है 3 ग्रंथ तो पहले से छाप करके लाए थे भागवतम के पहले स्कंद के, लेकिन गीता प्रभुपाद की नहीं छपी थी, तो प्रभुपाद को गीता पर प्रवचन देना पड़ता था, तो डॉक्टर राधा कृष्णन की गीता से प्रवचन देना पड़ता था। डॉक्टर राधा कृष्णन की गीता के जो व्याख्या है वो वैष्णवों के अनुसार नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद जो है श्लोक देख करके और अपनी व्याख्या देते थे, लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन की गीता से उनको देखना पड़ता था, है ना। तो फिर प्रभुपाद ने अपनी गीता छापी अपने तात्पर्य, है ना, तो इसमें उन्होंने $5,000 प्रभुपाद को दिए। तो प्रभुपाद ने धन्यवाद दिया उस किताब में छपा उसमें कि मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ, प्रभुपाद ने किताब में लिखा था। अब ये जो है इनका जो है मतलब पूरी तरह से ये डूब गए इस प्रभुपाद के आंदोलन में, पूरी तरह से डूब गए। तो क्या करते थे, मंदिर के लिए आवश्यक सामान खरीदना तो यही जाएंगे, मंदिर के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, है ना, तो सब्जी वगैरह भी है और जैसे अगरबत्ती है, हैं, पूजा की बहुत सी चीज़ें हैं तो वो खरीदना है तो जयानंद खरीदते थे। प्रसाद बनाना है तो ये प्रसाद बनाते थे, रसोई की सफाई करना तो ये करते थे, कचरा फेंकना तो भी ये करते थे, नए भक्तों को प्रशिक्षण देना तो यही करते थे, और ये सब दिन भर टैक्सी चलाने की बात करते थे, दिन भर टैक्सी चलाते थे, क्या समझे, दिन भर टैक्सी चलाते थे, और जब आते थे शाम को तो सब काम करना, मंदिर के लिए सामान खरीद के लेना जाना है, भक्तों को प्रशिक्षण देना है, है ना, पूजा करना है, है? सब ये करते थे, है ना। और प्रभुपाद चाहते थे कि टैक्सी चलाओ क्योंकि पैसे की जरूरत है मंदिर को, तो मंदिर का खर्चा कैसे चलेगा, तो टैक्सी चला करके मंदिर का खर्चा भी पूरा जो है देते थे और मंदिर की सब आवश्यकताएं पूरी करते थे। वे उन सभी कार्यों में दक्ष हो गए, दक्ष मतलब एक्सपर्ट, दक्ष हो गए जो कृष्ण भावना के प्रचार के लिए आवश्यक थे। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि उनकी पुस्तकों का जनता में वितरण हो, और जयानंद प्रभु ने श्री चैतन्य शिक्षामृत को बेचकर उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सबसे पहले इन्होंने एक किताब बेची, कौन सी, श्री चैतन्य का शिक्षामृत, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो प्रभुपाद इस कार्य का उद्घाटन किया। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस, अब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस कौन जानता है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस अभी तो बहुत बड़े तरीके से मनाया जाता है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, लेकिन जब प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे तो कौन जानता है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस पर मंदिर के बाहर सड़कों पर स्वाभाविक रूप से इन्हें कीर्तन करते देखकर प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। अकेले कीर्तन कर रहे हैं सड़कों पर, गौर पूर्णिमा के दिन इनको कितनी प्रेरणा प्राप्त हुई कि अकेले कीर्तन कर रहे हैं मंदिर के बाहर सड़कों में। तो प्रभुपाद ने देखा सच्चा भक्त, अकेले कीर्तन तो कोई नहीं करता है? हम लोग जाते हैं कीर्तन तो फिर कीर्तन की जो है टोली जाती है, अकेले कीर्तन कौन करेगा, या अकेले कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद जो है बहुत प्रसन्नता हुई। इससे प्रेरणा प्राप्त कर जैन प्रभु ने अन्य भक्तों के साथ शहर की व्यस्तम सड़कों पर नियमित रूप से कीर्तन प्रारंभ कर दिया, और जब देखा प्रभुपाद प्रसन्न हो रहे हैं तो और भक्तों को लेकर के रोज कीर्तन करने जाने लगे। और कहाँ कीर्तन करते थे, जहाँ ज़्यादा भीड़ हो सड़कों में, जहाँ ज़्यादा ज़्यादा लोग सुनेंगे हरिनाम सुनेंगे, तो वहाँ जाते थे कीर्तन करते थे। इस प्रकार से इन्होंने संपूर्ण विश्व में भ्रमण करके कीर्तन करने वाले दलों के लिए आधार तैयार किया। भक्त और अन्य जो भक्त हैं और जो दूसरे अभक्त हैं, दोनों ज्ञानंद प्रभु की शुद्धता से तुरंत आकर्षित हो जाते थे। इतनी शुद्धता थी, कहते हैं शुद्धता ही शक्ति है, इतनी शुद्धता थी कि कोई भक्त हो तो आकर्षित हो जाता था, और कोई भक्त नहीं है, शराबी है, जुआड़ी है, व्यभिचारी है, वो भी आकर्षित हो जाता था, इनकी शुद्धता से आकर्षित हो जाते। एक बार इन्होंने श्रीला प्रभुपाद को माला पहनाई, फूलों की माला पहनाई। अब टैक्सी, दिन भर टैक्सी चला करके आए तो पूरा शरीर जो है, कपड़े जो है ग्रीस से सने थे, वो तो होता है ना, मतलब बीच में गाड़ी जो है ठीक करना है तो मैकेनिक का भी काम करते थे गाड़ी को ठीक करना, तो पूरे शरीर में तो तेल और वो ग्रीस लगा हुआ था। और प्रभुपाद के पास आए और माला पहनाई प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद से भी क्षमा मांगे कि मेरे कपड़े बहुत गंदे, मैंने ऐसे कपड़ों में आपको माला पहनाई। ऐसे लगता है ना कि भाई अगर आप गुरु जी को माला पहनाते हो, गुरु महाराज को माला पहनाते हो, तो आप भी तो कुछ ठीक ठाक रहो कि है ना, ऐसे गंदे गंदे कपड़ों में माला पहनाएंगे तो कैसा लगता है, खराब लगता है। तो उन्होंने क्षमा मांगी, प्रभुपाद को माला पहनाई, वह क्षमा मांगी कि मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, तेल और ग्रीस सब लगा हुआ है, क्षमा करिए मैंने आपको माला पहनाई दी। तो प्रभुपाद क्या बोले, प्रभुपाद ने कहा नहीं, कोई अपराध नहीं है, तुम गंदे हो सकते हो लेकिन तुम्हारा हृदय शुद्ध है। प्रभुपाद क्या बोले कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं लेकिन हृदय तुम्हारा बहुत शुद्ध है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। ये क्षमा मांग रहे थे कि मैं बहुत गंदा हूँ और मैं आपको माला पहना रहा हूँ। तो प्रभुपाद कहते नहीं, तुम गंदे हो सकते हो लेकिन तुम्हारा हृदय बहुत शुद्ध है। प्रभुपाद ने कहा ज्ञानंद प्रभु अनेकों के हृदयों को छू लेते थे, अपने चेहरे से, अपने चेहरे के इशारे से, अपने हाव भाव से हर व्यक्ति के हृदय को छू लेते थे। इनका जो भाव था ना, तो चेहरे में भाव आ जाता है, अपना जो मन है वो चेहरे में मन का भाव आ जाता है, इसलिए कहा जाता है ना कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा मन का दर्पण है, चेहरा मन का दर्पण है, है ना। तो इनके चेहरे में इनका जो भाव है वो ऐसा था, दिव्य भाव था, कि हर व्यक्ति जो है प्रभावित हो जाता था, इनसे प्रभावित हो जाता था। और उत्तर में हर कोई कृष्ण की कुछ न कुछ सेवा करता था, अगर ये कुछ बोलते थे, किसी से बात करते थे, तो वो तैयार हो जाता था कि क्या करना है, बताओ क्या करना। किसी व्यक्ति से अगर बात करें तो कुछ वो उसके अंदर इच्छा होती थी कि कुछ दे दो इनको, क्या तुम्हें चाहिए, क्या करूं तुम्हारे लिए, क्या दूं तुम्हें, ऐसी भावना पैदा होती थी। और मंदिर के लिए हर वस्तु या तो मुफ्त में ले लेते थे, ये चाहिए तो वो फ्री में दे देगा या फिर बहुत कम कीमत में दे, लेकिन करता था कुछ ना कुछ सेवा, कि कुछ पैसा छोड़ देता, कम पैसे में देगा या फ्री में दे देगा, ले लो फ्री में ले लो, ऐसा जो है भाव। इसकी प्रभुपाद के प्योरिटी इज फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है, है ना। तो ये शुद्धता इनके अंदर थी। दुकानदारों से मित्रता करते थे, प्रशासकीय अधिकारियों से भी मित्रता करते थे, अब बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनसे भी मित्रता करते, तो बिल्कुल उसी भाव में, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, सब के प्रति इनका जो भाव था वो एक जैसा भाव था। शराबियों से भी मित्रता करते थे, नशेड़ियों से मित्रता करते थे, सभी ज्ञानन से प्रेम करते थे, और उन्होंने सभी को प्रसन्नता से भगवान की सेवा में लगाया। कोई शराबी भी हो उससे भी कुछ काम करा लेते थे, चाहे कचरा उठाना है, कोई चीज़ उठाना है, रखना है, उससे भी काम करा लेते। अब उनके पास तो पैसे नहीं है, शराबी हैं, सबसे अधिक परिश्रम करते हैं, लेकिन किसी की थोड़ी सेवा हो तो बड़ी प्रशंसा करते थे कि बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा परिश्रम तो इनका होता था, तो अपनी प्रशंसा नहीं करते। और कोई थोड़ी सी सेवा कर दे, किसी ने एक कीली ठोंक दी तो कहते बहुत बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, ऐसे बोलते थे। विनम्र थे, सहनशील थे, कृपालु थे और विरक्त थे। इनके कार्य, इनके शब्द, इनका जीवन और इनकी मृत्यु भी भगवान की भक्ति की विधि का उदाहरण है। हर कार्य में पता चलता था कि ये विधि है काम करने की, है ना। इनकी मृत्यु भी जो है ऐसी है कि भाई मरने की विधि भी ये है, इस प्रकार से उदाहरण दिया। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं विशेष रूप से जो व्यवहारिक सेवा को प्रोत्साहित करती हैं, ज्ञानानंद प्रभु को अपने जीवन से अधिक प्रिय थी। जो प्रभुपाद की शिक्षाएं जिसमें कि व्यवहारिक रूप से कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण भावना में लगना है, है ना, तो इनमें जो है ज्ञानानंद प्रभु को इतनी रुचि थी कि जीवन से ज़्यादा प्रिय है। कोई भी सेवा इनको मिल जाए तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना, ऐसी इनकी भावना थी। एक बार एक भक्त ने पूछा कि कृष्ण भावना में कैसे प्रगति की जाए, ऐसे पूछते ना कि भाई भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, है ना, तो आप बताएंगे कि भाई माला जप करो, या आप कहेंगे मंगल आरती में आओ, कुछ तो कहोगे ना। अगर आपसे कोई पूछे भाई भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, तो आप कहें प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो या पुस्तकें वितरण करो, बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। इनसे किसी ने पूछा कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मैं सेवा में इतना व्यस्त हूं कि मैं इस विषय में जानते ही नहीं कि क्या कह रहे, मैं सोचते ही नहीं हुए ऐसे कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, मैं सेवा में इतना व्यस्त हूं, है ना। सबसे अच्छी विधि यही है भक्ति में आगे बढ़ने की, क्योंकि हम नौका में बैठे हैं, आप नौका में बैठे हैं, हैं, तो आप नौका में बैठे हैं तो नौका अपने आप किनारे की तरफ ले जा रही है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नौका जो है किनारे की तरफ जा रही है तो आप नौका में बैठे हैं तो यही बड़ी बात है कि आप बैठे रहो, और अगर आप आगे बढ़ोगे तो गिरोगे, तो नीचे जाओगे, पानी में जाओगे, तो आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो आप भक्तों के संग में अगर रहते हैं और सेवा में लगे हैं तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, और आप पहुंच रहे हैं मंजिल की तरफ, जा रहे हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि भक्तों को पीछे करके आगे बढ़ें, तो क्या होगा, नौका में आगे बढ़ोगे तो कहाँ जाओगे, नीचे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, नीचे, पानी में, समुद्र में जाओगे। तो भक्तों से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना है, भक्तों के साथ में रहो, जहाँ हैं वहीं पर स्थान है स्थिता, अपने स्थान में स्थित रहो। और ज्ञानानंद प्रभु क्या थे, कभी भी भक्तों से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, नीचे रहते थे हमेशा, और कहते थे मैं नीचे रहूँ, भक्तों, सब भक्तों के नीचे रहूँ, हाँ मैं इसी में सुख अनुभव कर रहा हूँ, तो भक्ति में आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम नीचे रहें तो सुरक्षित हैं। तो ज्ञान तो वो हमेशा नीचे रहते थे, तो भक्ति में आगे बढ़ने की सोचते नहीं थे कि भक्ति में आगे बढ़ूं, है भक्तों के नीचे रहना, भक्तों के जो है सेवा में लगे रहना। ज्ञानानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद के निर्देशों को पालन करने में इतने तल्लीन रहते थे कि उन्हें प्रभुपाद से मिलने का समय भी नहीं मिल पाता था। प्रभुपाद आते कब आते उनको पता नहीं चलता था, क्यों, सेवा में लगे, इतनी सेवा में, मतलब दिन भर टैक्सी चलाना, है ना, फिर कभी टैक्सी ठीक कर रहे हैं तो अकेले उसमें ही लगे हुए हैं, टैक्सी को ठीक कर रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, मंदिर की अभी पूजा कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, तो इतना काम था। अब प्रभुपाद कब आते हैं इन्हें पता नहीं चलता था, है ना। तो ये समझ गए थे कि शारीरिक संघ से अधिक महत्वपूर्ण है वाणी के द्वारा संघ। गुरु का जो संघ है, वैष्णव का संघ है, दो प्रकार से होता है, वपु के द्वारा और वाणी के द्वारा। तो प्रभुपाद का संघ करते थे वाणी के द्वारा। तो प्रभुपाद से हालांकि दूर रहते थे, लेकिन इनके प्रभुपाद के आदेशों का हमेशा पालन करते हुए लगे रहते थे सेवा में। तो कहा जाता है कि व्यक्ति को इस प्रकार सेवा करनी चाहिए कि श्री कृष्ण से देखना चाहे। जन प्रभु ने अपने सेवा भाव से इस उक्ति को चरितार्थ किया कि ऐसी सेवा करो कि कृष्ण भी आपको देखने के लिए आए। तो आप कृष्ण को देखने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं देख सकते कृष्ण को। अगर आप सेवा में रहेंगे तो कृष्ण स्वयं में आपको देखेंगे, और कृष्ण अगर आपको देखना चाहें तो बहुत आसान है, और आप कृष्ण को देखना चाहें तो संभव नहीं है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री अगर आपको देखना चाहें तो आ सकते हैं आपके पास, क्या दिक्कत है। या आप भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहें तो आप नहीं मिल सकते, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है ये सेवा में लगे रहते थे। बार बार शिला प्रभुपाद इनके विषय में पूछते थे कि जियानंद कहाँ है। प्रभुपाद आते मंदिर में तो सब भक्त लोग जो है अपने काम छोड़ के आते हैं, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, और प्रभुपाद जो है चलते कहते हैं वेरे जियानंद। जो नहीं आता है प्रभुपाद के पास उसको प्रभुपाद पूछते हैं कि वो कहाँ है, और जो आते हैं उनके लिए प्रभुपाद जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी भी जो है स्थिति होती है। जयानंद प्रभु के लिए शिला प्रभुपाद और श्री कृष्ण परम सत्य थे। इनके जीवन में प्रभुपाद और कृष्ण परम सत्य, और देह सहित प्रत्येक वस्तु उनकी सेवा में लगानी थी। अब एक दिन क्या हुआ कि सैन फ्रांसिस्को मंदिर में जगन्नाथ जी की अर्चा विग्रह आ गए। ये घटना एक अलग बड़ी महत्वपूर्ण है। तो किसी प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के 2 फुट बड़े जो है अर्चा विग्रह बन गए। अब सैन फ्रांसिस्को मंदिर में जगन्नाथ जी की पूजा होने लगी, और प्रभुपाद की इच्छा हुई, प्रभुपाद की इच्छा हुई कि जनसाधारण में जगन्नाथ की कृपा को दिया जाए। तो अपनी तीव्र इच्छा प्रकट की कि प्रत्येक वर्ष जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का आयोजन जैसे किया जाता है, तो प्रभुपाद की इच्छा हुई कि हर साल सैन फ्रांसिस्को में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू की जाए। तो जियानंद ने प्रभुपाद की इस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरा स्वयं को समर्पित कर दिया, पूर्ण समर्पण कर दिया कि प्रभुपाद की इच्छा है ना। तो प्रभुपाद ने बताया कि रथ होता है, जगन्नाथ जी रथ होता है, उसमें रस्सी होती है, और रस्सी से लोग खींचते हैं जगन्नाथ जी के रथ को। तो प्रभुपाद ने जैसे बताया उसी से इन्होंने एक ट्रक को जो है क्या बनाया, रथ की तरह बना दिया कि मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो जो योग्यता थी मैकेनिकल इंजीनियर की वो पूरी उसमें लगा दी। तो ट्रक से जो है कैसे वो रथ बनाया जाए, जगन्नाथ जी को बिठाया, उसमें जो है रस्सी बांधने का इंतजाम किया और ट्रक को जो है मतलब ऐसे बना दिया पूरा ढक करके जैसे क्या दिखाई देगा, रथ जैसा लगे, है ना। तो सबसे पहले रथ यात्रा निकली, है ना। 9 जुलाई 1967 को भारत के बाहर इतिहास में पहली बार सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा निकली 9 जुलाई। 16 जनवरी को इन्होंने ज्वाइन किया था और फरवरी के महीने में दीक्षा प्राप्त की थी, और 9 जुलाई 1967 मतलब रथ यात्रा निकली केवल इनके सहयोग से, क्योंकि ये इंजीनियर हैं। ट्रक को जो है रथ कैसे बना सकते हैं, ट्रक को जो है रथ कैसे बना सकते हैं, कोई कंपनी थोड़ी तैयार होगी इस काम को करने के लिए, कोई नहीं करेगा, मैकेनिकल इंजीनियर। तो इनकी जो डिग्री इन्होंने प्राप्त की उसका सही उपयोग प्रभुपाद की सेवा में किया, तो ट्रक को जो है रथ बना दिया। और जियानंद के खून पसीने और कड़ी मेहनत के कारण हुई, और हर साल अब जियानंद जो है धन एकत्रित करते, रथ यात्रा के पहले से ही धन इकट्ठा करते, रथ यात्रा के बहुत पैसे की पैसा इकट्ठा करते थे, सरकारी अनुमति लेना अकेले, सरकारी अनुमति लेने के लिए भी अकेले जाते, प्रचार भी करते रथ यात्रा का, बड़े बड़े रथ बनाते, 3 रथ बनाने लगे। पहले साल तो 1 रथ बनाया था, अब 3 रथ बनाए, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव 3 रथ बनाए, और नगर पुलिस और यूएस सेवा, यूएस पार्क सेवा दल के लोगों के लिए स्वयं प्रसाद बनाकर उत्सव को और सुधारा, प्रसाद बनाकर के खिलाया ऑफिसरों को, इससे उत्सव और सुधरा। रथों के निर्माण के समय रथों पर ही रहते, और जैसे जैसे रथ यात्रा की तारीख निकट आती अपनी नींद को भूल जाते थे। रथ बनाना है, रथ जैसा मतलब लगे बढ़िया जगन्नाथ, है ना, और 3 रथ बनाने, तो रथों में ही रहते थे, रथों में ही सोते थे और रथ में दिन रात बनाते थे, या सोते नहीं है, सोते थोड़ा बहुत सोते दिन रात काम करते, रथों में काम करते। सबसे पहले गोल्डन गेट पार्क से आरंभ हुआ ये उत्सव, प्रत्येक वर्ष अधिक अधिक लोगों को आकर्षित करने लगा। पहली बार निकला तो बहुत सफल हुआ, और लोगों ने देखा, जो सरकारी पुलिस थी उन्होंने देखा कि पहली बार ये सड़क में इतने नवयुवक चले और कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा इन लोगों का कार्यक्रम है, जब सड़क में बहुत ज़्यादा युवक निकलते हैं तो तोड़ फोड़ जरूर करते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ कुछ नहीं हुई, केवल कीर्तन किया, नृत्य किया, और जगन्नाथ जी का रथ निकला। तो सैन फ्रांसिस्को के इतिहास में ये पहली घटना है कि सड़क में इतने लोग निकलें और तोड़ फोड़ ना हो। तो सरकार ने भी जो है बड़ा इसको जो है सम्मान दिया कि भाई तुम लोग निकालो फिर, तो ये ऐसी रथ यात्रा हमेशा निकालो। जयानंद प्रभु को धन्यवाद जिनके कारण हजारों लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त हुई। अब ये उत्सव विश्व के सभी मुख्य शहरों में मनाया जाता है, तो इनका जो है बहुत अद्भुत चरित्र है। तो अभी समय तो हमारे पास बहुत थोड़ा है, तो प्रभुपाद का जो पत्र है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था 1 मई 1977 को, 67 में प्रभुपाद के संपर्क में आए थे, 16 जनवरी 1967, और 1 मई 1977 को इन्होंने शरीर छोड़ा था। तो वो तिथि के अनुसार आज की तिथि है, आज कितनी तारीख है, 17 मई है, है ना, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, ये जयानंद प्रभु की जो है ये तिरुभाव तिथि है। तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा था, मतलब 5 मई को प्रभुपाद ने पत्र लिखा था, प्रिय जयानंद कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो, मैं तुमसे अत्यंत विरह का अनुभव कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने पत्र लिखा, मैं तुमसे अत्यंत विरह का अनुभव कर रहा हूँ। 1967 में तुम सैन फ्रांसिस्को में मेरे पास आए, तुम कार चलाते और हरे कृष्ण का जप करते थे। मेरी भगवद गीता के प्रकाशन के लिए $5,000 देने वाले तुम पहले व्यक्ति थे। प्रभुपाद ने लिखा, उसके पश्चात तुमने अनेक प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा की। मैं आशा करता हूँ कि शरीर त्यागते समय तुम श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे और परिणाम स्वरूप तुम्हें श्री कृष्ण का नित्य संग प्राप्त होगा। प्रभुपाद कहते, आशा करता हूँ, यदि नहीं, यदि तुम्हारे अंदर कुछ भौतिक इच्छा का लेश रहा तो तुम स्वर्ग में जाओगे और देवताओं के साथ ऐश्वर्यशाली जीवन बिताओगे, वहां से तुम आध्यात्मिक जगत जा सकते हो, मतलब गिरोगे नहीं। कोई भक्ति बहुत आगे बढ़ गए और थोड़ी अगर भौतिक इच्छा रही तो स्वर्ग में जाकर के फिर स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ में जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। तो जैन को प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अगर तुम स्वर्ग में भी अगर गए हो, अगर भौतिक इच्छा कुछ बनी रही तो स्वर्ग में तुम अगर तुम जाओगे तो स्वर्ग से फिर नीचे नहीं आओगे, नहीं तो क्या होता है, छीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, स्वर्ग में छीण पुण्य होने से नीचे आना पड़ता है। प्रभुपाद पत्र लिखते हैं जगन जयानंद को कि तुम नीचे नहीं आओगे, अगर कुछ भौतिक इच्छा थोड़ी सी बनी है तो स्वर्ग में वो इच्छा पूरी करके तुम कहाँ जाओगे, वैकुंठ में जाओगे। प्रभुपाद पत्र लिखते हैं उनको, हैं, वहां से तुम आध्यात्मिक जगत जा सकते हो, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक जगत जाने में विफल रहता है तो पुनः पृथ्वी पर किसी ब्राह्मण या धनी परिवार में जन्म लेता है, वो भी है, अगर भक्ति में इतने आगे नहीं बढ़े हैं, कच्चे रहे, तो स्वर्ग से नीचे आएंगे तो ब्राह्मण या धनी परिवार में जन्म लेगा, जहाँ उसे अपनी कृष्ण भावना को फिर से जागृत करने का अवसर मिलता, किंतु क्योंकि तुम कृष्ण कीर्तन सुन रहे थे मुझे विश्वास है तुम सीधे कृष्ण लोक ही गए होगे। प्रभुपाद कहते हैं, तो प्रभुपाद ने फिर अंत में ये श्लोक लिखा गीता का, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। श्री कृष्ण ने रोगी शरीर से तुम्हें मुक्त कर अपनी सेवा में स्थान देकर तुम पर बड़ा उपकार किया है। इनको जो है कैंसर हो गया था, लेकिन इन्होंने जो है अपने गुरु भाइयों से कहा कि प्रभुपाद को नहीं बताना कि मुझे कैंसर हो गया है, क्योंकि ये रथ यात्रा की सेवा कर रहे हैं। बोले रथ यात्रा जब तक पूरी ना हो जाए तो प्रभुपाद को सूचना नहीं देना कि मुझे ये गांठ में दर्द हो रहा है, वो गांठ कैंसर था। और जब अस्पताल में भर्ती भी हुए तो लॉस एंजलिस की रथ यात्रा के लिए भी वो जो है अस्पताल में रहते हुए फोन कर करके लोगों को जो है मतलब तैयार करते थे रथ यात्रा के लिए, दान इकट्ठा करते थे, और वहाँ के डॉक्टरों को नर्सों को भी जो है कृष्ण भावना का प्रचार करते थे। तो इस तरह का इनका जो है जीवन है, तो ये जो जीवन है बहुत दिव्य है। और प्रभुपाद ने ये कहा भी है कि ज्ञानन का जो है जो तिरुभाव दिवस है उसी प्रकार से मनाया जाए जैसे हमारे वैष्णव आचार्यों का मनाया जाता है ना। तो आज के दिन चूँकि उनका तिरुभाव दिवस है, साल में केवल एक ही दिन होता है, तो हम जो है कम से कम उनको याद करें, उनके बारे में कुछ सुनाएं, कुछ सुने, है ना। तो आपने जो बातें सुनी उनके बारे में किसी और को बताइए। तो आज के दिन जो है अगर आप इनके बारे में सुनते हैं सुनाते हैं तो इन वैष्णव जो महापुरुष हैं इनकी कृपा हमें प्रत्यक्ष प्राप्त होती है ना। ठीक है, तो अभी हमारे पास समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो प्रश्न कर सकते हैं आप लोग, या कोई चर्चा हो किसी की, या मैं प्रश्न करूँ। मैं प्रश्न करूं, ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा बताइए, इन्होंने भौतिक शिक्षा में कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी, किस चीज की शिक्षा प्राप्त की थी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन इन्होंने उसके अनुसार जो है नौकरी नहीं की। बहुत बड़ी नौकरी और बहुत बड़ा जो है इनको सम्मान मिलना था, बहुत पैसा मिलना था, तो क्यों इन्होंने नौकरी नहीं कि इसका कारण क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी बच्चा बताएगा। हरि वो तो छोटा बच्चा है वो, उसने बड़ा सही उत्तर दिया कि मतलब मान सम्मान नहीं चाहते थे, कि मान सम्मान हम जो है जब जितना चाहते हैं उतना हम भगवान से दूर होते जाते हैं, हमारी इच्छा थी मान सम्मान की। और ये सब बड़ी बड़ी नौकरियाँ इसीलिए होती हैं कि भाई मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना, और सब दिखाएंगे कि हम कितने सुखी हैं, हम कितने सुखी हैं, अंदर उतना ही अशांति बनती जाती है ना। और चूँकि इनको जो है बचपन से ही खोज थी, किसी चीज़ की खोज थी, है ना, तो वो इनकी खोज जो है कहाँ पूरी हुई, कब पूरी हुई, कौन बताएगा? इनकी खोज जो थी कौन बताएगा, कब पूरी हुई, कहाँ पूरी हुई? हाँ माता जी, प्रभुपाद से जब मिले, हाँ, वो कौन सी दिनांक, कौन सी डेट है प्रभुपाद से मिले? 16 जनवरी और 16 जनवरी 1967 16 जनवरी 1967 उनका जो है ये जीवन का। और उनकी खोज क्या थी, 4 साल की अवस्था में इनके मन में क्या प्रश्न उठा था, कौन बताएगा? भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, कहाँ पर थे ये? चर्च में थे, भगवान कहाँ है? तो इनकी दादी थी, तो दादी ने कुछ प्रश्न का उत्तर दिया तो क्या संतुष्टि हुई? नहीं संतुष्टि, ये प्रश्न बना रहा। अभी 28 साल की अवस्था में इनको प्रश्न का उत्तर मिला कि भगवान कहाँ है, है ना। धन्यवाद। श्री ज्ञानानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।